अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अन्ये स्वार्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम् उम्भी स्त्री सुकृता यद्वात् सुमनः स्वीवषट्पदैः निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणां खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहां दग्धं मृगास्तथारण्यं जारा भुक्त्वा रतां स्त्रियां। इति गोप्यो हि गोविन्दे गत्वा कायमानसः कृष्णदूते व्रजं जाते उद्धवे त्यक्तलौकिकः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। जन उद्धव जिसे कहती हैं कि निश्चित है कि आपका ब्रज में आगमन आपके स्वामी मथुरा नाथ के द्वारा हुआ है, मतलब आप उनके द्वारा भेजे गए हैं और आपको वे अपने माता पिता के पास भेजे हैं उनका प्रिय करने के लिए, हम लोगों का प्रिय करने के लिए नहीं, क्योंकि हमें उनके स्मरण के योग्य नहीं है। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि ठीक है आप लोग उनके स्मरण के योग्य नहीं हैं, तो नंद महाराज और यशोदा कैसे स्मरण के योग्य हैं? तो इसी का उत्तर देते हुए कहती हैं कि बंधु नाम स्नेहन बंध मुने अपि सुदुस्त्यज। महाराज और यशोदा के प्रेम का वर्णन वो कर रही हैं, श्री कृष्ण उनके बंधु उनके देह से उत्पन्न है। तो इस संसार में स्वाभाविक देखा जाता है कि देह से जो उत्पन्न हुआ है उसमें प्रीति रहती है, प्रेम रहता है, स्नेहानुबंध रहता है। इसी की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी तक में देह के संबंधी में स्नेह पास रहता है और अन्यों के साथ जो मित्रता होती है वो अर्थकृता होती है, और बंधुओं के साथ जो स्नेह होता है वो अर्थकृत नहीं होता है, अपने आप होता है। लोक में देखते हैं बच्चा कितनी भी गलती करे कुछ भी करे लेकिन माता पिता का सहज स्नेह होता है, क्योंकि वो बंधु है, देह का संबंधी है। अन्य जो देह संबंध से व्यतिरिक्त लोग हैं उनके साथ यदि कोई संसार में मित्रता जोड़ता है तो अर्थकृता मैत्री होती है। अर्थ का अर्थ प्रयोजन, मतलब, अपने मतलब से की जाती है। जी कहें कि ठीक है, जब तक मतलब नहीं सधता है, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तब तक तो मैत्री रहती है ना। तो श्री गोपीजन कहते नहीं नहीं, तो वो भी मैत्री नहीं रहती है। मैत्री विडम्बनम, अर्थ विडम्बनम, जावद अर्थ विडम्बनम। विडम्बनम का अर्थ है अनुकरण, नाटक। जब तक अर्थ नहीं सधा है तब तक कोई किसी से प्रेम करते हुए देखा जाए तो वह प्रेम नहीं है, प्रेम का अनुकरण मात्र है। और जब अर्थ सध जाता है तब तो अनुकरण तक नहीं होता है। पहले तो अनुकरण कर रहा था विडम्बनम, लेकिन अर्थ अपना मतलब सध गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। श्री गोपियों ने वास्तव में प्रीति का, स्नेह का उद्घाटन किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारा स्नेह कृष्ण के प्रति सच्चा है। तो गोपीजनों के कहने का आशय है कि जो देह का संबंध है उसमें तो स्वाभाविक प्रीति चलती है, और देह का संबंध नहीं है तो उसमें प्रेम लोग नहीं करते हैं, और करते हैं तो नाटक करते हैं। तो देखा गया है कि कोई स्त्री सब प्रकार से पति की सेवा कर रही है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग छोड़ देते हैं स्त्रियों को, ऐसा देखा गया है संसार में। और देह के साथ इतनी ममता है, अहंता है कि देह से अगर संबंध, देह का संबंधी है तो बहुत प्रिय, से पुत्र वो बंधु हुआ, उसके साथ बंधन। तो मुनियों के लिए भी देह के संबंध का पास छोड़ना कठिन है। तो जो मुनि है वास्तव में संसार का मनन करके, संसार के संबंध की अनित्यता, असारता का जो रात दिन मनन करते हैं, और जिनका मन परब्रह्म में, भगवान में रम रहा है, वे लोग भी देह के संबंध के बंधन में रहते हैं, स्नेह के बंधन में रहते हैं। और फिर अभी जिसको कामना हो, राज प्राप्ति की कामना हो, जैसे कृष्ण अभी संसार में आ सकती है, तो वो कैसे छोड़ देंगे देह का स्नेह। तो वे याद किए हैं अपने माता पिता की, इसीलिए आपको यहाँ भेजे हैं, कहने का ये आशय है। उक्त हेतु भवतिषु अपि समान इत्या शंका निवृत्त्यर्थं बंधुना मिति उक्तम। अगर उद्धव जी कहें नहीं, जैसे नंद बाबा के प्रति स्नेह है भगवान कृष्ण का, या नंद बाबा का स्नेह कृष्ण के प्रति है, वैसे ही तो आप लोगों का भी स्नेह कृष्ण के प्रति है और कृष्ण का स्नेह आप लोगों के प्रति है। तो कहते हैं नहीं, इसीलिए वो बंधु शब्द दे रहे हैं, बंधुना, और अनुपद लगा रही हैं, स्नेह अनुबंध। अनुबंध का अर्थ होता है बहुत टाइट बंधन, बहुत दृढ़ बंधन है। क्यों कोई इस संसार में किसी की सेवा कर रहा है, कपड़ा दे रहा है, लत्ता दे रहा है, पाल रहा है, पोष रहा है? इसलिए कि हमारे देह से उस बच्चे का पालन माँ कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, इसलिए कि उनके देह से वो। इसको दैहिक स्नेहानुबंधन कहते। अनुबंध पदोपादाने संबंधे न सह जात से स्नेह से संबंध निवृत्ति भवति। यहाँ जो अनु है, जैसे ही जीव को देह मिलता है और देह का संबंधी होता है, जन्म के साथ ही सहज, ज के साथ, सहज का अर्थ होता है जन्म के साथ ही जो हो उसको सहज, सह माने साथ, ज माने जन्म। तो सहज स्नेह का पास होता है जो देह का संबंधी है, और जब तक संबंध रहता है तब तक स्नेह रहता है। औपाधिक भ्रमस से जावत उपाधि सत्व नियमात, अतएव तत्व विदाम अपि जावत देह तावत तत्र स्नेहानुवृत्ति उपलब्ध्यते। जब तक उपाधि है तब तक औपाधिक भ्रम रहता है, उपाधि जब तक है तब तक औपाधिक भ्रम रहता है। जैसे जब तक किसी को देह है प्राकृत, तब तक देह में आत्म भ्रम रहता है, रहेगा। तो इस कारण से यह सिद्ध हुआ कि जब तक देह है, भले वो तत्वदर्शी हो जाए, परम विद्वान हो जाए, लेकिन जावत देह, जब तक देह है तावत तत्र स्नेहानुवृत्ति उपलब्ध्यते। तब तक देखा गया है कि देह में स्नेह रहता है और देह के संबंधी में स्नेह बना रहता है। ये दुष्परिहार है, यही तो माया है। वास्तव में संसार में अपने देह के संबंधियों से लोग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो नित्य संबंधी है, भगवान है, उनके साथ कोई प्रेम नहीं कर रहा है। इन गोपीजनों का जो प्रेम है वो आत्मा का प्रेम परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ। देह चला जाए, परिवार चला जाए और उपाधियां चली जाएंगी, लेकिन कृष्ण के साथ जो संबंध हो गया वो नहीं टूटता है। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो मैया तजो अय्या पर कन्हैया नहीं तजे। सब छोड़ जाए लेकिन कृष्ण नहीं छूटेंगे, क्योंकि आत्मा के संबंधी हैं और बाकी सब देह के हैं। तो गोपीजनों के यहाँ कहने का अर्थ यह है कि इसी देह के सम स्नेह के कारण, अपने बंधुओं में स्नेह के कारण वे आपको भेजे। नंद बाबा का उनके प्रति अतिशय प्रेम है। और अन्येषु मैत्री अर्थ कृता, जो देह के अतिरिक्त बंधु व्यतिरिक्त अस्मद विधेशु देह संबंध रहितेशु, हमारे जैसे जो लोग हैं उनके प्रति कोई प्रेम करता है तो हम तो देह के संबंधी हैं नहीं, इसलिए जो मैत्री होती है, जो स्नेह होता है, वो अर्थ कृता होता है। हम सब जानते हैं कृष्ण हमसे प्रेम किए, वो क्यों किए, वो अपने प्रयोजन से प्रेम किए। कार्य निमित्त या प्रार्थनीय पदार्थ जब तक नहीं मिला तब तक प्रेम था, नहीं तो हम उनकी स्थिति को जानती हैं या किस तरह से हम लोगों ने उनकी सेवा, लेकिन चले गए छोड़ कर। और याद भी किए तो देह के संबंधी की याद किए, हम लोगों की याद नहीं की। तो अन्येषु अर्थ कृता मैत्री, वास्तव में भगवान कृष्ण का जो प्रेम है गोपीजनों के समान, वो गोपीजनों के समान ही निरुपाधिक है, किसी कार्य से किसी निमित्त से नहीं हुआ, वो सहज है। जैसे मैं उस दिन फूल का उदाहरण दिया था, फूल में सुगंध सहज होती है, स्वाभाविक, वैसे ही गोपियों में सहज कृष्ण प्रेम है और कृष्ण में सहज गोपीजनों के प्रति प्रेम है। पूर्व राग होता है, प्रेम उत्पन्न होते हुए देखा जाता है, लेकिन वह केवल लौकिक रीति मात्र है। वास्तव में वे नित्य पति हैं कृष्ण और वे नित्य प्रियाएं हैं, नित्य पत्नियां हैं। तो यहाँ जगत में लीला करने के लिए भगवान अपने परिकरों को लाए हैं, तो उनमें सहज ही गोपियों के प्रति स्नेह है और गोपियों का कृष्ण में। परंतु संसार में क्या है, इसका पर्दाफाश श्री गोपीजनों के मुखारविंद से भगवान करा रहे हैं। देख लीजिए संसार का प्रेम क्या है, कहीं भी तो अर्थकृता मैत्री, न तो बंधुसु इव स्वाभाविकी इत्यर्थ। अन्यों के साथ, देह के अतिरिक्त जो लोग हैं उनके साथ जो मैत्री की जाती है वो प्रयोजन बस की जाती है, बंधुओं में जो स्वाभाविक प्रीति होती है उस तरह नहीं होती है। स्वप्रयोजन प्रयुक्ता, प्रयोजन निबद्धा, प्रयोजनोपाधिका, इसका अर्थ कृता का कई अर्थ। और वो अभी कब तक टिकती है, अवध अर्थ। दूसरों के साथ प्रेम किया जाता है संसार में, जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक होगी तब तक एक नाटक चलता, वही प्रेम नहीं रहता है, कपट पूर्वक हृदय में हृदय भाव रहता है। जैसे सुमनः सु षड्पद ही, जैसे पुष्पों के प्रति भावरों का, भावरों की मैत्री। वास्तव में पूछा जाए क्या पुष्पों से भावरों की मैत्री होती है? कमल के पुष्प में जब वो खिला रहता है तो भावरे जाकर के बैठ जाते हैं और लगता है कितना प्रेम कर रहे हैं। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद वो पुष्प बंद हो जाता है, तो उसी में रहते हैं, उसमें रहते हैं कमल को सुख देने के लिए नहीं, उसके गंध से आकृष्ट होकर के उसका पराग चूसते हैं। और जब पराग बीत जाता है तो उड़ जाते हैं और चिंता नहीं करते। तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि भौंरा में और कमल में कितना प्रेम है, बेचारा अपना परिवार छोड़ करके और कमल के साथ रह रहा है, कमल के साथ नहीं रह रहा है, कमल का पराग चूस रहा है या सुगंध में आविष्ट है। जिस दिन कमल मुरझा जाएगा उसके पास वो फिर आ नहीं सकता, झांकेगा नहीं। प्रयोजनावसान पर्यंतम अनुकरण मात्रम जस्या सा मैत्री, अनुकरण मात्र न तो तात्विकी। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वो तात्विकी प्रीति नहीं होती है, वो विडम्बनम अनुकरण मात्र प्रीति होती है, न तो तात्विकी, यथार्था नहीं होती है। साच जावत अर्थ विडम्बनम, जब तक जावत जावंत ते अर्था है तावत देव तस्या मैत्रिया अनुकरण मात्रम। वो भी जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मैत्री का अनुकरण किया जाता है। अर्थे सिद्धे पश्चात नैव अनुवर्तते इति भाव। अर्थ सिद्ध हो जाने पर मैत्री का अनुकरण भी नहीं रह जाता है। मैत्री कहां से रहेगी, मैत्री तो शुरू से ही नहीं थी। तो अस्मासु कृष्ण स्नेह कदापि न अस्थित। हम लोगों में कृष्ण का प्रेम कभी नहीं था। वो जब थे तो कपट करके केवल ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, हम लोगों से कभी प्रेम नहीं किए हैं। इतना दुख हो रहा है हृदय में वियोग के कारण कि आज करें अपट था, वो सब झूठ था। इस तरह से भाव पहुंच रहा है। और चूंकि अपने पर यह बीता है इसलिए स्त्रियों के प्रति पुरुषों के द्वारा जैसे की गई मैत्री, अब आवेश में दोषारोपण चूंकि कृष्ण पर करना है तो ऐसे कर स्त्री सु पुंभी, स्त्रियों में पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार मैत्री की जाती है, भावरों के द्वारा पुष्पों में जो मैत्री की जाती है अनुकरण मात्र, अथवा पुरुषों के द्वारा जो स्त्रियों में की जाती है, स्त्रियों के प्रति प्रेम किया जाता है पुरुषों के द्वारा, वो सब कपट। और क्या स्त्रियों के द्वारा पुरुषों में जो प्रेम किया जाता है वो सब ठीक है? लेकिन हाँ ठीक है कुछ मतलब में, इसलिए कि यदि स्त्री का प्रेम पुरुष में धर्म के अनुसार हो तो वह स्थिर रहता है, ये देखा गया है संसार में। लेकिन पुरुषों का जो प्रेम है स्त्रियों में वो स्थिर नहीं रहता है। कितनी स्त्रियां इतिहास में पति के लिए सती हो गई लेकिन पति कोई भी सत्ता नहीं हुआ है कि नहीं? आज तक यह इतिहास है, देखा गया ना स्थिर प्रेम स्त्री का अपने पति के प्रति निभ जाता है, 50 वर्ष तक वो सेवा करती रहती है, और देखा गया है धर्म के अनुसार। यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं यदि वह धर्म पूर्वक हो, वर्ण और आश्रम के धर्म होते हैं, गृहस्थ के धर्म होते हैं, उसका निर्वाह स्त्री कर रही है, पत्नी कर रही है, तो वह संबंध है स्थिर देखा जाता है। लेकिन पुरुष का पतिव्रता स्त्री के प्रति भी प्रेम स्थिर नहीं देखा गया है। एक पुरुष कई विवाह कर लेता है लेकिन एक स्त्री कई विवाह नहीं कर सकती, कई पति नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है, स्वाभाविक है, पर फिर भी जहाँ स्नेह और प्रेम के तत्व का निरूपण किया जा रहा है तो उसमें तो देखा जाएगा कि पुरुषों का स्त्रियों के प्रति प्रेम नहीं होता है, जो है भी वो नाटक। तो इसी तरह से कृष्ण का जो प्रेम हम लोगों के प्रति था वह एक अभिनय था, अनुकरण था, वास्तव में प्रेम नहीं था। उद्धव जी सूरदास जी ने एक पद गाया है इस पर, तिकरी दिन ही गरे छुरी, प्रेम करके कृष्ण ने गर्दन पर छुरी चला दिया, कट गई थी पूरी गर्दन, थोड़ी सी बची हुई, प्रीति करी दिन ही गरे छुरी। जैसे बहेलिया पक्षी को फंसा करके लाता है और बाद में उसकी गर्दन को काट देता है, उसकी गर्दन काटने में आसान होता है, पतली गर्दन होती है पक्षी, तो प्रीति वो कही जाएगी, चारा डाल करके फंसा करके और फिर छुरी चला दे गर्दन पर, तो प्रीति करी दिन ही गरे छुरी। जैसे बधिक चुगाए कपट कन, जैसे कोई बहेलिया कपट का दाना चुगा करके पाछे करत बुरी, पीछे बहुत बुरी हालत करता है। तो ठीक है आप ऐसा कह रही हैं तो श्री कृष्ण क्या बहेलिया का काम कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण तो बहेलिया है, बधिक है, मुरली मधुर कर कांपी, मुरली जो मधु है वही है लासा, लासा में जैसे वो पक्षी सट जाता है, फंस जाता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मुरली सुनता था वो फंस जाता था। और खास करके मनुष्य को भी जब वह कहीं फंस जाता है कि किसी के पेच में पड़ जाता है तो कहते हैं ना कौन चिड़िया फंसी आदमी को भी चिड़िया ही कहते हैं, चिड़िया फंसाना है। तो श्री गोपीजन भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वो बधिक है, मुरली जो है वो लासा है, और उसका जो हाथ है सुंदर सुंदर हाथ वो कांपी है। कांपी कहते हैं यहाँ पर बांस के तीली। मोर चंद्र टटवारी, टटवारी कहते हैं कहीं बहेलिया छिपा रहता है, छिप कर, मोर पंख जो है यही इसके छिपने की जगह है। मोर चंद्र टटवारी बंक बिलोकनी लूक लाग बस सकी न तन ही संहारी। और जो उसकी तिरछी चितवन है कृष्ण की बंक बिलोकनी, वो है सुलूक। लूक मन दागना, तो बंक चितवन से दाग दिया और अब इसके बाद बस रही न तन ही संहारी, अब तो छटपटाने लगा शरीर। जिस पक्षी को दाग दिया जाएगा या सूल खोप दिया जाएगा वो कैसे ठीक से रह सकता है। तलफत छाड़ी चले मधुबन को फिरकै लई न सार, तड़प गई हम लोग छटपटा रही थी लेकिन छोड़कर मधुबन चले गए। तलफत छाड़ी चले मधुबन को फिरकै लई न सार, सार मतलब खबर, सुधे फिर सूरदास वा कुशल तरोवर फेर न बैठी डार। अब फिर ये पक्षी जिसको उन्होंने बेधा, वो चिड़िया फिर कुशल तरुअर पर नहीं बैठ सकी, कुशलता नहीं हो पाई आज तक। जैसे मारी हुई पक्षी को तो बहेलिया प्रायः ले जाते हैं, लेकिन ये बहेलिया ऐसा है कि सब बेध करके मार करके सबको यहीं तड़पता हुआ छोड़ करके चला गया, और वो चिड़िया फिर कुशल तरुअर पर नहीं जा सकी, उन्हें कुशल नहीं हुआ, फिर वो वृक्ष पर नहीं बैठ सकी। जो पक्षी वृक्ष पर बैठने की शक्ति न रखे उसकी बहुत दुर्दशा मानी जाएगी, वो सूरदास जी का एक पद है। प्रीति करी दिनिंगरे छुरी, प्रीति करी दिनिंगरे छुरी, जैसे बधिक चुगाय कपट कन, जैसे बधिक चुगाय कपट कन, पाछे करत बुरी, प्रीति करी दिनी गरे छुरी, प्रीति करी दिनी गरे छुरी, मुरली मधुर चेप कर कांपी, मोर चंद टटवारी बंक बिलोकनी लोक लागी बस सकीन तनही संहारी। तलफत छाड़ी चले मधुबन को, तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिर कैलईन सार सूरदास वा कुशल तरोवर, सूरदास वा कुशल तरोवर फेरिन बैठी डार। प्रीति कर दिनी गरे छुरी, प्रीति कर दिनी गरे छुरी, निस्वम त्यजंती गणिका। ये पहला उदाहरण है। वेश्याएं निर्धन पुरुष को त्याग देती है, वही पुरुष जो पहले धनी रहता है और वेश्याओं को धन देता है, लेकिन कुछ काल के बाद यदि वह गरीब हो जाता है, धनहीन हो जाता है, तो वेश्याएं उससे प्रेम नहीं करती। तो पहले तो यह आया था कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों में किया गया प्रेम कपट होता है, सच्चा नहीं होता है, तो यहाँ पर स्त्रियों की क्यों निंदा कर रही हैं? ये स्त्रियों में भी गणिका के कर रही हैं। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जब इन लोगों ने कहा कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों के द्वारा किया गया प्रेम तात्विक नहीं होता, यथार्थ नहीं होता, तो शायद गोपियों को ऐसा लगा कि ये कहेंगे कि स्त्रियों का पक्ष कर रही है, इसीलिए स्त्री का भी प्रेम पुरुष से सच्चा नहीं होता इसको कह रही है। निःस्वम त्यजन्ति गणिका, गणिका वेश्या को कहते हैं। और गणिका का अर्थ होता है जो गिने। वेश्या के पास कई पुरुष आते हैं तो इसलिए ये आएगा वो नहीं आया तो ये आएगा वो नहीं आया तो ये आएगा, गिनती रहती है, इसलिए गणिका का। तो गणिकाओं का जो संबंध है पुरुष के साथ वो अपने स्वार्थ के धन के लिए। और वही व्यक्ति जो पहले वेश्या को बहुत धन दिया है परंतु अब धन उसके पास नहीं रह जाता है तो उस व्यक्ति से वेश्या का प्रेम नहीं रहता है। अखंडानंद सरस्वती ने अनुवाद किया धत्ता बता देती है, है ना, धत्ता बता देती है, इतना ही चाहती है, क्योंकि उसको पैसा से प्रयोजन है, पैसा वाले से नहीं। पैसा वाले से वो नाटक मात्र होता है उस समय जब तक उसके पास पैसा रहता है, लेकिन पैसा खत्म हो जाता है तो त्यजंती, ये त्यजंती सब जगह लगेगा। गणिका निःस्वम त्यजंती, प्रजा हा अकल्पम निरपतिम त्यजंती। प्रजा समझते हैं नागरिक देशवासी, वो तब तक राजा को स्वीकार करते हैं जब तक राजा प्रजा का पालन करता है, समर्थ रहता है, धन होता है उसके पास, पालन की शक्ति होती है, बहुत तरह से पालन किया भी है, नहर बनवाना और क्या क्या करना, अकाल के समय अनाज बांटना, सीमा पर मिलिट्री खड़ा करके और सुरक्षित रखना प्रजा को, इस तरह से राजा पालन करता है। एक बार ये सूरतदास गा रहे थे, धरती से सोना उपजे कुदरिया के होख से, देशवास आजाद बा तलवरिया के नोक से। देश में हम लोग सुख से खा रहे हैं, पी रहे हैं, भागवत सप्ताह कर रहे हैं, पर कुछ जवान खड़े हैं सीमा पर और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो देशवास आजाद बा तलवरिया के नोक से, तलवार के नोक से देश आजाद है। ये राजा का कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण को रोक करके और हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन जनता ऐसी है ओहो कि राजा कितना पालन किया है, क्या किया है, उसको नहीं देखती है, राजा से प्रेम नहीं करती है, पालन करवाना चाहते हैं कि हमारा पालन कर दे, हमारा कुछ कर दे, लाखों लांछन सह करके, अखबार में लाखों आलोचना सह करके राजा पालन करता है, लेकिन प्रजा थोड़ी सी बात के लिए, जब प्याज आलू के चलते वो राजा को हटा सकती है तो और क्या नहीं कर सकती। ये अभी भी ताजी घटना हुई है इसलिए मैं कह रहा हूं, तो पहले से ही ये चला आ रहा है, तो आज से 5000 वर्ष पहले श्री गोपियां इस बात को कह रही हैं कि प्रजा अकल्पम निरपतिम त्यजंती। वंश परंपरा से पालन किया है राजा प्रजा का कई तरह से, लेकिन प्रजा हमेशा पालन देखती है, जब पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको नहीं चाहती, नहीं त्यजन, उसको पालन से प्रेम है, राजा से नहीं। इस संसार का स्वार्थमय प्रेम तो आप लोग देख रहे हैं, नहीं प्रेम क्या स्वार्थमय व्यवहार कहिए, प्रेम थोड़े। अच्छा, अधीत विद्या आचार्यम, अधीत विद्या, विद्या जीवन में समस्त पुरुषार्थ देती है। इस संसार में मनुष्य के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई धन है तो वो है विद्या। तो जो गुरु विद्या दिया, लोक परलोक में काम आने आने वाले, इतना बड़ा रत्न दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन जब पूरी हो गई पढ़ाई, अधीत विद्या, विद्या जब अधीत मतलब प्राप्त हो गई, तो आचार्यम त्यजन्ति, विद्यार्थी नहीं तीसरे से, अधिक विद्यार्थी लोग आचार्य को छोड़ देते हैं, तो पूछते भी नहीं है कि इस समय उनको हार्ट अटैक हो गया है, क्या हो गया है, कैसा हो गया है, कि बुढ़ापे में कैसा दुख भोग रहे हैं, कुछ नहीं, अपना नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, कथा बांच रहे हैं, कमा रहे हैं, और जिससे विद्या पढ़े हैं उसकी खोज खबर नहीं लेते, छोड़ देते। तो उनको विद्या से मतलब है, आचार्य से नहीं। तब तक पढ़ रहे थे तब तक तो हो कहते थे गुरुजी हम आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, लगता था बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, जिसे खुश होकर के वो पढ़ा दे हमें और पढ़ा दिए बस जाओ। कोई प्रेम नहीं रहा। कौन कितना दिया है उसके अनुसार करना चाहिए ना। आचार्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु देता है शिष्य को, सबसे महत्वपूर्ण। कोई किसी को घर बना करके दे दे, कपड़ा दे दे, और कुछ दे दे, मोटर गाड़ी दे दे, लेकिन वह दान किसी काम का नहीं है। जिसने विद्या दान किया है वही सबसे बड़ा उपकारी है वास्तव। लेकिन अधीत विद्या, जब विद्या प्राप्त हो गई तो आचार जमते जमते आचार्य का त्याग कर देते। यह जनरल बात है, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग कर रही है, मतलब 99% यही हिसाब है। छोड़ने वाले बहुवचन में चल रहे, यानी एक व्यक्ति ने हजारों का उपकार किया है, आचार्यम एक वचन में है, और अधीत विद्या, विद्या लेने वाले बहुत हैं, यह बहुवचन का प्रयोग किया है। बहुत उपकार किया, सब किया, लेकिन कौन देखता है, कौन इस समय सोचता है कि हमको इस गुरु जी ने पढ़ाया था, हमको संस्कृत पढ़ाया था, हमको भागवत पढ़ाया था, हमको ये दिया था, कोई सोचता है? नहीं, सब छोड़ दिए। तो जिस समय वो मैत्री किए थे, पढ़ रहे थे, वह तात्विकी मैत्री नहीं थी, वो मैत्री का नाटक था, विडम्बनम था, बस अर्थ कृता, अर्थ सध गया, बस चलो अब हो। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, अच्छा ठीक है, यह कहा जाए कि भाई वो विद्यार्थी हैं, वो गलती कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, वो प्रेम करना नहीं जानते हैं, लेकिन यह ऋत्विज की बात कर रहे हैं, जो दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं, यज्ञ कराते हैं, पढ़ाते हैं, ऋत्विज लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण, पढ़े लिखे विद्वान पंडित, लेकिन यजमान जब उनको दक्षिणा दे देता है, दत्त दक्षिणम यजमानम, दक्षिणा उनको मिल गई तो इसके बाद अब यजमान मरा कि उसके घर में आग लगाए कभी सुध ही नहीं लेते। वो केवल दक्षिणा से मतलब होता है पंडितों को। तो जब पंडितों की, विद्वान शास्त्रज्ञों की ये हालत है, तो उनका प्रेम भी किसी के प्रति नहीं, एक कृष्ण जैसे क्या प्रेम करेगा, विचार करने की बात है। बाह्य दृष्टि से वो कह रही है, इन भगवान का प्रेम तो उनके प्रति नित्य है, सत्य। ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, ये तो हम लोगों ने देखा है कई बार, ऋत्विज लोग आए, यज्ञ योग कराए, सब किए, और घर में रहते भी है, प्रसाद भी लेते हैं, लगता है कि इस परिवार के साथ नित्य जुड़ गए, लेकिन दक्षिणा मिल गई, चले गए, और 10 बरस पर एक बार फोन भी नहीं किए कि कैसे हैं, क्या है। और नए नए यजमान की खोज में रहते हैं जहाँ दक्षिणा मिले, अथवा दत्त दक्षिणम का अर्थ है कि बेचारे की जितनी शक्ति थी यजमान की, एक बार दे दिया, और अब शक्ति नहीं है तो उसके पास नहीं जाते हैं। अब नया धनी यजमान कौन है, उसको फंसाते हैं। तो फंसाना और पैसा लेना, ये प्रेम है बताइए? और जाएंगे उसके बच्चे से कहेंगे, बेटा कैसे हो, ठीक है, आराम से रहना, ये करना वो करना, बाहर मैत्री विडम्बना। और पैसा यजमान लोग देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, मन में इच्छा होती है कि और अधिक दे। कि बाहरी व्यवहार जो होता है वो होता है कि ओह कितना प्रेम है। गोपीजनों को सब पता है संसार का, कि उनका जो प्रेम है भगवान के साथ वो निरपाधिक है, किसी कारण से नहीं है, है तो है। इन संसार में इस तरह की बात है। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो पढ़े लिखे पंडितों के, विद्वानों की यह दशा है, तो अन्य की क्या होगी कि स्वार्थ से मैत्री का नाटक करते हैं। दत्त दक्षिण, दत्ता दक्षिणा जैन तम यजमानम ऋत्विज ज्याज कह त्यजंती त्यजंती कदाचित अदत्ता दक्षिणा जैन तम तत्समीपम अपि न गच्छन्ति। अगर दक्षिणा नहीं दिया है तब तो मतलब त्यागने की बात तो बहुत दूर, त्याग तो देते हैं कभी पास भी नहीं जाते। दक्षिणा दे दिया है फिर भी उसका त्याग तो करते हैं, कभी कभी ऊपर से घूम आते हैं। इस शहर में गए हैं तो यजमान दिया था कुछ, चलो उसको भी कुछ फोन कर लें घूम लें, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं दिया है तब तो इस तरह की बात। आचार्य ऊपर, आचार्य किसे कहते हैं? संस्कृत का एक श्लोक है, उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापय द्विजः स रहस्यम तदंगम च तमाचार्यम प्रचक्षते। जो शिष्य का उपनयन संस्कार करके और उसको रहस्य और अंग के साथ वेद पढ़ाता है उसको आचार्य कहते हैं। इति उक्तम स्वयं सर्व पुरुषार्थ हेतु भूत विद्या प्रदाय कत्वा परमोपकारिणम आचार्य, जिसने समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, प्राप्त कराने वाली विद्या को दिया है, वो परम उपकारी आचार्य को भी विद्यार्थी छोड़ देते हैं। और आगे कहते हैं, खगाबीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारा भुक्त्वा रतां स्त्रियम। बीत फलम वृक्षम खगा त्यजंती, बीत फलम वृक्षम, विगत फलम वृक्षम, विगतानी फलानी जस्मा तम वृक्षम, जिसके फल पूरा पूरा बीत गया, अब एक भी नहीं रह गया है, उसको विगत फल बीत फलम कहते। गत फलम, बीत फलम दोनों का एक ही अर्थ। खगा पक्षी, खगा का यह एक स्पेशल भाव चक्रवर्ती पाजी करते हैं, खे भ्रमंत, आकाश में जो भ्रमण करते हैं देखते रहते हैं कौन वृक्ष में फल है कौन में नहीं है, तो जिसमें फल होता है उसी पर बैठते हैं, भले बगीचा का माली उनको उड़ाता रहे लेकिन देखते हैं तो आकर बैठ जाते हैं उससे वृक्ष पर आते हैं, तो खग इसीलिए कहा गया उनको। खे भ्रमंत फलानी दृष्टवा तदर्थम आगता, फल देख करके अब पहुंच जाते हैं, चे 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 करते हुए आते हैं और खाते हैं। छूत पीड़िता फलवंतम वृक्षम सेवमाना, भूख से व्याकुल रहते हैं और रोज उड़ उड़ करके आ करके खाते हैं सेवन करते हैं, लगता है कि वृक्ष से इनका बहुत प्रेम है, मनसाइन रख रहे हैं, बहुत प्रेम है वृक्ष के साथ। परंतु तद अपगमे, जब ही फल का अपगम होता है बीत जाता है तो तम वृक्षम त्यजन्ति, छोड़ देते हैं। तो उनको फल से प्रेम था, फल से मतलब था, वृक्ष से नहीं। लेकिन उस समय वृक्ष पर ऐसे बैठते थे जैसे लगता था इसके परिवार के हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं जीवन मरण है इनका, मतलब तो खाने के लिए टिके हुए हैं वृक्ष का फल, और फल बीता बस चले तेजंत। यहाँ फल से उपलक्षण भी लेना चाहिए कि छाया द्यर्थिनस्तु तद रहितम इत्यपि इत्यस्यापि दम उपलक्षण, फलार्थी फल बीतने पर चला गया और यदि छायार्थी है तो जब पता होता झड़ गया तो छाया नहीं रहा तो वो भी वहां से डेरा डंडी हटा लेता है, वो भी उस वृक्ष से प्रेम नहीं करता। और जब जरूरत होती है छाया में रहने की तो कोई आता है तो कहता है दपन भी मत तोड़ो, इसमें इसमें मत करो, लगता है कि जैसे उसका बहुत बड़ा प्रेम है, और प्रेम है तो उसमें जब छाया ना रहे तब भी रहो रक्षा करो, लेकिन नहीं, वो छाया और फल से जब तक मतलब है तब तक है नहीं, तो इसके बाद में अतिथय और अतिथिगण, दो प्रकार के अतिथि हो, उनको अभ्यागत भी कहते हैं अतिथि भी कहते हैं। तो कुछ लोग निमंत्रण से आते हैं और कुछ लोग भूख से व्याकुल होकर किसी गृहस्थ के घर पर आ जाते हैं है ना, ऐसे रह चल रहे चल रहे, भूख लग गई तो सोचे चले यहाँ खा ले, तो किसी अतिथि के यहाँ निमंत्रण से, किसी गृहस्थ के यहाँ निमंत्रण से या भूख से लोग आते हैं, अति छाया बहुवचन में, भोजनार्थम एव आगता, भोजन के लिए ही आए हैं, लेकिन भुक्तवा जब खा लेते हैं यहाँ अतिथय का अर्थ है जो देह के संबंधी नहीं है, ब्राह्मण आदि जो ऐसे संबंधी नहीं है ऐसे आ गए, तो भुक्तवा खाते हैं, और च ऊपर से दक्षिणा सत्कार आदि भी लेते हैं, भोजन मिले भोजन के बाद भी कुछ रुकते हैं, इसीलिए च कह रही है, और च पूरा हो गया बस त्यजंती और आजकल के गृहस्थ कहते भी है एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, तो च के लिए चार थे तो दक्षिणा के लिए रुकते हैं, बस भोजन हो गया, दक्षिणा मिल गई है, बस गृहम त्यजन्ति, भोजनादि दात्री गृहम त्यजन्ति, ये अर्थ है। तो घर या घर का मालिक दोनों को एक करके कह रही है, गृह को छोड़ देते हैं, मतलब उसको छोड़कर चला जाए, तो गृही शब्द क्यों कह रही हैं, गृहस्थम कहती, तो गृह इसलिए कह रहे हैं कि कह रही हैं कि गृह को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो चल दिए और उसी समय कुछ दूर गए हैं, और कहीं घर में आग उग लगे उपद्रव हो फिर भी नहीं लौटते हैं, वो चले, ये भी नहीं सोचते कि इसी घर में खाए हैं, पैसा लिए हैं, चले बुझा में रहें या जल गए हैं तो कुछ दिन रहें, इनको सहारा दें, कम से कम दक्षिणा वाला पैसा भी चल दे करके कुछ प्रसाद दें उनको, नहीं, त्यजंत गृहम त्यजंत, इस प्रकार का एक कपट प्रेम संसार में, ये पूर्णतः सत्य बात कह रहे हैं। भोजन करने से पहले तो ऐसा समाचार पूछते हैं बच्चों से, स्त्री से, सबसे, लगता है कि इस घर के ये पक्का संबंधी, और वह केवल भोजनांत दक्षिणांत मैत्री रहती, तथा तथा शब्द इसमें आया है, दग्धम मृगस तथा, तथा इन सब के लिए नहीं, तथा मतलब जितने भी जगत के और उदाहरण हैं समुच्चय में लगा हुआ है, समुच्चय में, और जितना आप अपने मन से सोच लीजिए इसी तरह का सारा शब्द, मृगा अरण्यम तेजंती, दग्धम अरण्यम तेजंती, मृग हरिण या पशु कोई नव तृणार्थम आगता, नए नए घास को देख करके आते हैं, उनको भोजन से मतलब रहता है, खूब खाएंगे पिएंगे फुदकेंगे रहेंगे, लेकिन जब तक उस वन में रहते हैं तो यही लगता है कि यही इसी वन के निवासी हैं, इसको छोड़ करके नहीं जाते हैं, खूब प्रेम करते हैं, उसी वन में उत्पन्न भी होते हैं, जस्मिन बने उत्पन्न वृद्धि च गता, उसी वन में जन्म हुआ, उसी वन में बढ़े, लेकिन फिर भी कितने वर्षों तक वो वन उनको पोसा हो, लेकिन ज्यों ही दग्धम, ज्यों ही आग लगती है, वन को बुझाते नहीं है, छोड़कर भाग जाते हैं दूसरे वन में अरण्यम, क्योंकि उपयोगा भावा, तो अब उपयोग नहीं रहा, दग्धम अरण्यम, तो अग्रे संपत्ति संभावनायाम अपि अल्पोपयोगम आशंके, ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो फिर बरसात आएगी तो फिर इसमें घास हो सकता है, ये नहीं सोचते हैं भाग ही जाते हैं, और मन में सोचते हैं कि अब यहाँ क्या रहना है, ये दग्ध अरण्य नहीं हुआ, घास पात भी समाप्त हो गया तो चले जाते हैं दूसरे वन में, और दग्ध का ये नहीं कि पूरा वन जल गया, वन का एक कोना भी जला तो भाग जाते हैं, नहीं सोचते हैं, चलो थोड़ा सा जला है तो यहाँ रहे, तो उनका उस वन से प्रेम नहीं है, वन के घास पात से प्रेम, जारहा जार पुरुष लंपट पुरुष गण रताम स्त्रियम भुक्त्वा त्यजम गोविंदे गत्वा कायमानसहा कृष्ण दूते व्रजम जाते उद्धवे त्यक्त लौकिकः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतहृयः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। इस प्रकार जब कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियां केवल रोती ही रोती रहती थी, गत हृय हो गई। उद्धव जी के जाने पर उनकी लज्जा बिल्कुल चली गई, इतना विरह का उन्माद और बढ़ा, कृष्ण की इतनी याद और बढ़ गई कि वे क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रह गया। कृष्ण में, गोविंद में गत वा काय मानस, वैसे तो पहले से ही गोविंदा पर हृतात्मना हृतात्मानो, पहले से ही कृष्ण में उनका मन था, लेकिन उद्धव जी के ब्रज में जाने पर जो दशा गोपियों की हुई वो विलक्षण हुई। और समय से कृष्ण दूते ब्रजम, उद्धवे ब्रजम जाते, कृष्ण दूते समागमात जासाम एवं भूता दशा जाता तासाम प्रिय समागम संभाविता दशा तो वाचा मप्य गोचर सूता। जब प्रिय का दूत आया है तब तो गोपियों की यह दशा हो गई। सुखदेव गोस्वामी का यह भाव है, कृष्ण दूत के आने पर जब यह दशा हो गई तो प्रिय जिस दिन ब्रज में आएंगे उस दिन क्या दशा होगी, इनकी वाणी का और मन का और शरीर का आवेश कितना अधिक कृष्ण में होगा। दूत के आने पर तो ये दशा हो रही है कि वो त्यक्त लौकिका, वो लोक धरातल से बिल्कुल ऊपर थे, लोक इसको नहीं समझ सकता। तो इस तरह से उद्धव जी के सामने प्रकट हो रही हैं। पूर्व में गोकुलेंद्र श्लेषण सर्वेंद्री व्यापके, गोविंद का अर्थ है गोकुलेंद्र अथवा सर्वेंद्रीय व्यापक गोविंद, जो समस्त इंद्रियों में छा गए। गतो वाक काय मानसा, गतानी वागादिनी जासामता, उनके वचन शरीर और मानस सब गोविंद में चले गए थे। गत गोविंदे गत, वे वाणी से केवल गोविंद का वर्णन कर रही थी, शरीर से ऐसी चेष्टा कर रही हैं कि उनकी सेवा कर रही हैं, उनके साथ नाच रही हैं, उनको खिला रही हैं, झूला झूला रही हैं, शरीर की ऐसी दशा हो रही थी। शरीर प्रकट में ऐसा था, लगता था कि कृष्ण की सेवा कर रही हैं या कृष्ण बन गई हैं। कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते हैं तो वैसे वे बजाने लगती थी। उद्धव जी ने देखा कि गोपियों का जो शरीर है कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा भाव हो रहा है और कृष्ण बन गई हैं, कृष्ण लीला कर रही। तो लौकिका और गत हृय शब्द बता रहा है कि वे क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। अब वहां लोक मर्यादा और लज्जा आदि का कोई प्रश्न नहीं, तो प्रेम में जैसे जैसे लीला की स्फुरणा हो रही है वही मुंह से निकल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गत वा काय मानस, जब मन शरीर और वचन केवल गोविंद में प्रविष्ट हो गया है तो जो कुछ भी वो बोल रही है अब स्वरूप शक्ति के दबाव में बोल रही हैं, घड़ादनी शक्ति के, वो स्वतंत्र नहीं रह गई। अतः यह कहा जाए कि अरे उद्धव के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए तो ये कहना ही गलत। वो दूसरा राज्य है, दूसरा धरातल है, बिल्कुल अलौकिक अप्राकृत। गायन्तः प्रिय कर्माणि रुदन्त्यश्च गतहृयः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य जानि कैशोर बाले, अपने प्रियतम के कर्मों को गायंत गाने लगी। उद्धव जी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तब तक तो लगती है गाने, जैसे गोवर्धन धारण हो, दवानल पान हो या काली दमन हो, रासलीला लगी गाने, उनके सौंदर्य के विषय में, उनके करुणा के विषय में, माखन चोरी के विषय में, चीरहरण के विषय में लगती है गाने। और उद्धव जी सब देख रहे हैं, ये अवाक रह करके देखने लगते हैं इनके प्रेम को, और उनको अद्भुत सुख मिल रहा है। प्रेम का विकार जब सामने प्रकट होता है उस महाभागवत के, तो वे तो अपने को परम धन्य मानने लगे। आगे यह वर्णन आएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की दशा को देख करके उद्धव को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला और अपने को धन्य मानने लगे जैसा कभी कल्पना नहीं किए थे। अयंत प्रिय कर्माणी और रुदंत्यश्च गता हरिया, लाज तो चली ही गई थी, लगी रोने उच्च स्वर से, हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे ब्रजनंदन, और कई कई तरह से गा गा करके उनके सामने रोने लगे। और रो रो करके कुछ कह रही हैं बीच बीच में, कृष्ण रो रो करके उद्धव जी से कह रही हैं, कृष्ण से कह रही हैं, कैशोर बाल्य जो है दोनों के बीच में पौगंड अवस्था है भगवान की। सब समय भगवान लीला करते हैं, कर्म करते हैं, बचपन में बचपन जैसी लीला करते हैं। माँ जसोदा ने इन लीलाओं का बहुत आस्वादन किया है और किशोर अवस्था की लीलाओं को गोप सखा और गोपियाँ, और पौगंड अवस्था की लीला को बच्चों ने आस्वादन किया। 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं और 6 से 10 को पौगंड और 11 से 15 को किशोर अवस्था को। प्रिय कर्माणी, प्रिय कर्माणी का है अर्थ है प्रियस्य कृष्णस्य कर्माणी अथवा प्रिय कर्माणी रास विहार आदि। गोपियों को रास विहार आदि बहुत प्रिय कर्म था भगवान का। तो प्रियतम की तो कोई भी लीला उन्हें प्रिय लग रही है, इसीलिए स्मरण आ रहा है और गा रही। नेत्रों की ये दशा हो रही है, बरस रहे हैं रात दिन, लेकिन विरह की ज्वाला आग तनिक भी बुझ नहीं रही। श्री बिहारी जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में, हे प्रियतम, आपके विरह से नेत्रों में वर्षा की झड़ी लगी है लेकिन फिर भी विरह की आग बुझ नहीं रही। लाल तिहारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसय बरसय नीरहूँ मिटय न झरहूँ झार, मिटय न झरहूँ झार। झरहूँ का अर्थ है झड़ी से, वर्षा की झड़ी से भी झार मतलब ज्वाला बुझ नहीं रही। और आश्चर्य है कि भीतर कलेजा में आग लगी है और आँख से पानी निकल रहा है। ये कविता में कहते हैं जब हृदय में आग लगी है तो आग लगने पर तो पानी उत्पन्न होगा नहीं, लेकिन जितनी आँच हृदय में है उतना ही पानी नेत्रों से निकल रहा है, और पानी इतना अधिक बरस रहा है फिर भी आग बुझ नहीं रही। आप करने लगी गोपियों के विलाप के कुछ पद सूरदास जी दर्द। फिर ब्रज बसहूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहूँ गोकुलनाथ, हे गोकुल के नाथ रक्षक, फिर से ब्रज में आ जाइए, फिर यहीं रहिए। आपको जो कुछ भी दुख हो रहा था ब्रज में रहते समय, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप आ जाइए, आ जाइए। गोकुलनाथ का अर्थ है गायों के रक्षक, और गोकुल का अर्थ इंद्रिय कुल भी होता है। हमारी आंखें अनाथ हो गई हैं, हमारे कान अनाथ हो गए हैं आपकी बोली सुने बिना, हमारी इंद्रियां अनाथ हो गई हैं, तो आप गोकुलनाथ हैं, गायों के और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। हे गोकुलनाथ, फिर ब्रज बस हूँ, फिर आकर के ब्रज में रहिए किसी तरह से। फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ। अब जब आएंगे यहाँ रहने लगेंगे तो हम लोग ने जो जो गलती किया है अब नहीं करेंगे। बहुरिन तुमही जगाय पठवाओ, बहुरिन तुमही जगाय पठवाओ, गोधन के साथ फिरी ब्रज बसहूँ गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहूँ गोकुलनाथ। ये रो रही हैं, गा रही हैं, तो कहें अब हम आपको भोर में नहीं जगाएंगे, माँ यशोदा से कह देंगे कि माँ इनको मत जगाओ और आपको गायों के साथ अब वन में हम लोग नहीं भेजेंगे, आप सो नहीं पाते थे इसी से आप वहाँ चले गए। ये बच्चे जो ब्रज के हैं ये आधी रात को ही आकर के पुकारने लगते थे, कन्हैया कन्हैया चलो 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 चलो, क्योंकि कृष्ण को देखे बिना वो रह ही नहीं सकते थे। सच्चिदानंद घन परमानंद भगवान के साथ जो बच्चे खेलते थे वो तो दो तीन घंटा रात में बिलग रह जाए वही बहुत काफ़ी था उनके लिए। तो आधी रात को ही आकर के माँ यशोदा के दरवाजे पर कहते थे भोर हो गया भेजो भेजो कन्हैया को, और कृष्ण उनके प्रेम में पड़ करके चलने लगते थे। तो आज वो तो भगवान को आनंद आ रहा था इन लीलाओं से, लेकिन गोपियां ऐसा अनुभव कर रही हैं कि उनको सोने को नहीं मिला, इसी दुख से शायद ब्रज में नहीं आ रहे। तो इसलिए वे कहती हैं कि बहुरी ने तुम ही जगाए पठवाओ गोधनन के साथ, अब हम आपको जगा करके असमय में जगा करके गऊ के पास पीछे पीछे हम लोग नहीं भेजेंगे, आप केवल रहिए बहुत आराम से रही यहाँ पर ब्रज। बर जौन माखन खात कब हूँ दई हो देन लुटाए, आप माखन जितना खाने की इच्छा करें खाइए, अब हम नहीं बरजेंगे। उद्धव जी जा करके उनको बता दीजिएगा कि हम लोग कई बार माखन खाने से रोक लेती थी, नहीं खाने देती थी, तो बरजो न माखन खात कब हूँ, अब जितना मन करे माखन खाए नहीं बरजेंगे, यहाँ तक कि दहियों देन लुटाए लुटाए देन दहियों, वो जितना लुटाना हो बानरों को किसी को लुटावे हम नहीं रोकेंगे। ये सब लीलाएं याद आ रही हैं कि वे माखन खाते थे बानरों को लुटाते थे और हम लोग जा करके डांटती तुम्हारे बाप का है दादा का है लुटा रहे हो, तुम अपने घर में जो कुछ करना है करो, हमारे घर का क्यों माखन बर्बाद कर रहे हो। तो श्री कृष्ण यही सुनने के लिए भी जाते थे करते थे, लेकिन श्री गोपी जन आज इसको बहुत बड़ा अपराध मान करके कहते हैं कि हम नहीं रोकेंगे कभी भी। बरजौन माखन खात कबहू दहियो देन लुटाए, बरजौन माखन खात कबहू दहियो देन लुटाए, लुटा देना हम लोग खुद ही स्वीकार करेंगे, हम लोग देंगे जितना माखन लुटाना चाहें वो लुटा रहे हम लोग देंगे उनको। कबहू न दहियो उराहनो जसुमती के आगे जाए, हे उद्धव जी जाकर उनसे कह दीजिए कि अब हम लोग माँ यशोदा के पास कभी उलाहना नहीं ले जाएंगे, कभी उरहन नहीं देंगे, कभी कृष्ण के प्रति शिकायत नहीं करेंगे। बराबर रोज रोज कृष्ण के पास शिकायत करने जाती थी वो, कृष्ण की झूठी बात सुनने के लिए। वास्तव जो हम लोग उलाहना देती हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं कैसे बोलते हैं उस लीला को देखे बिना नहीं रहा जाता था, तो अब उसी को अपराध मान रहे हैं। प्रेम की ऊंची तरंग में जब मधुर भाव से भरे हुए भक्त में भगवान का ऐश्वर्य उदित होता है तो दयन उत्पन्न हो जाता है। जैसे अर्जुन जब विराट रूप देखे तो लगे कहने कि मैं आपको सखा कहा था, जदुनंदन कहा था, आपको सारथी बनाया, बहुत भारी अपराध किया, एक किया, हमको क्षमा कीजिए, एक चाहे हजार, खाते समय सोते समय बैठते समय जो भी अपराध किया वो हमको माफ़ कीजिए। वो अपराध नहीं था, वो तो भक्ति थी, भगवान उसी में आनंदित रहते थे। लेकिन आज कृष्ण के प्रति जो व्यवहार श्री गोपीजनों ने किया है उसको अपराध मान रही हैं, कहते हम कभी माता यशोदा को उलाहना देने नहीं जाएंगे, आप जितना माखन खाना हो खाइए लुटाइए, आप कह दीजिए ये बात कि अब गोपियाँ आपको कोई उलाहना नहीं देंगे चलिए। तो क्या वे इस कारण से नहीं आ रहे थे? अब गोपीजनों के मन में है कि इसी कारण से वे नहीं आ रहे, इसीलिए निवेदन कर रही हैं। बर जौन माखन खात कबहू दहियो देन लुटाए, कबहू न दहियो उराहनो
जसमती के आगे जाय फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ। दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसमती पान।
अब हम लोग माँ जसोदा के हाथ में रस्सी नहीं देंगे। जब रस्सी घट रही थी दो अंगुल, तो माँ जसोदा दौड़ दौड़ करके मांग रही थी गोपियों से, तो गोपियों ने दिया था रस्सी, रस्सी दिया था अपने घर से। तो शायद हमारे प्रियतम को ये याद होगा कि इन लोगों ने भी रस्सी दिया था बांधने के लिए मुझे, तो अब कह रहे हैं कि हम फिर अब रस्सी नहीं देंगे माँ जसोदा को और छड़ी नहीं देंगे उनके हाथ में।
दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसमती पान।
माँ जसोदा ने कहा था बांधते समय, किसी के यहाँ जाती नहीं थी, कहती थी जाओ दौड़कर रस्सी लाओ। रस्सी जब घट जाती थी तो गोपियों को इशारा करती थी, वो तो रानी थी ब्रज की, कहती दौड़ो अमुक नाम रह करके दौड़ो लाओ रस्सी। वो क्या करे, वो तो रानी कह रही है तो, और ये अपराध किए भी हैं तो इसलिए दौड़ करके रस्सी लाती। आज वह अपराध में गिन रही है उस कर्म को।
दौरी दामन देऊंगी, दाम का अर्थ रस्सी। दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसमती पान,
और न तो माँ जसोदा के हाथ में छड़ी देंगी। उसका अर्थ कल कभी छड़ी भी दिया था कि छड़ी दिखाएगी तो ये क्या कहते हैं। तो हम अब माँ जसोदा के हाथ में छड़ी नहीं देंगी, दौड़ करके रस्सी नहीं देंगी।
चोरी न देवु उघारी फिरी अवगुण न कही हाँ आन।
और उधर जी बता दीजिएगा प्रियतम से कि आप वो चाहे जो भी चोरी करना हो करें, अब हम लोग उनकी चोरी को बाहर नहीं कहेंगे। जसोदा के सामने तो कहना ही नहीं है, किसी के साथ किसी के पास हम लोग उनकी चोरी नहीं कहेंगे। अवगुण न कही हाँ आन, उनका कोई चोरी ही नहीं, कोई भी अवगुण हम लोग किसी से नहीं कहेंगे। हम लोगों ने उनको चोर चोर कह करके हल्ला किया, शायद इसी बदनामी से नहीं आ रहे हैं। किसी के बेइज्जती कहीं की जाए, वो आदमी वहाँ उस स्थान पर जाएगा, और वो भी साधारण खाने की चीज को लेकर के चोर चोर चारों तरफ से। ये अपने आप प्रेम के कारण दायन में ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण इन्हीं सब कारणों से ब्रज में नहीं आ रहे हैं।
तो दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसमती पान,
पानी माने हाथ। जसमती के हाथ में अब हम लोग छड़ी नहीं देंगे, रस्सी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करें।
चोरी न देऊ उघारी,
उघारी का अर्थ उनके चोरी का भेद हम नहीं खोलेंगे, अब किसी से नहीं कहेंगे।
अवगुण न कही हाँ आन,
और उनका अवगुण किसी से नहीं कहेंगे। और फिर कभी कभी हट करती थी, मान कर जाती थी गोपियां, विशेष करके राधा रानी, तो कहती हैं
करी हौन तुम सो मान हठी, हठी हौन मांगत दान।
हे प्रियतम, हे ब्रजनंदन, हम आपसे अब कभी मान नहीं करेंगे, आपसे कभी मान मैं नहीं करूंगी, मैं रूठूंगी नहीं। और आप जब दान मांगेंगे दान घाटी में गोवर्धन जी में, तो हम हठ नहीं करेंगे कि नहीं देंगे। आप एक बार मांगेंगे तभी दे, बिना मांगे हम आपको दे देंगे अब दान, हम अब नकारेंगे नहीं।
करी हौन तुम सो मान हठी, हठी हौन मांगत दान।
हम आपसे मान नहीं करेंगे कभी, और न दान मांगने पर हठ करेंगे, जरूर दे देंगे।
कही हौन मृदु मुरली बजावन करन तुम सौगान।
और हम अब कभी भी आपको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगे, बांसुरी बजाने में मेहनत पड़ती थी, सांस फूलती थी, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। और हम लोगों के कहने से कई बार बांसुरी बजाते, तो हम अब आपको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगी, आपको गीत गाने के लिए नहीं कहेंगी।
करी कही हौन चरणन देन जावक।
अब मैं अपने चरण में मेहंदी लगाने के लिए उनको कभी नहीं कहूंगी, राधा रानी कह रही।
मैं उनसे श्रृंगार करवाती थी, तो मैं कभी भी उनको अपने चरण में जावक लगाने के लिए नहीं कहूँगी, मेहंदी आदि लगाने के लिए नहीं कहूँगी, गुहन बेनी फूल, और अपने जूड़ा में अपने बालों में मैं कभी फूल गूंथने के लिए उनको नहीं कहूँगी। कही हऊ न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हऊ न करन सिंगार बट तर बसन जमुना कुल। मैं अपना श्रृंगार करने के लिए कभी उनको नहीं कहूँगी। आज भी श्रृंगार बट है जमुना जी में, वृंदावन में श्रृंगार बट, तो बट के निकट बट के तले में मैं कभी उनको श्रृंगार करने के लिए नहीं कहूँगी। बसन जमुना को के निकट रह करके और श्रृंगार बट के नीचे मैं अपना श्रृंगार करने के लिए उनको नहीं कहूँगी। आप जा करके कह दीजिएगा जिससे वे आ जाए, सब जगह लगेगा फेरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फेरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फेरी ब्रज करी हूँ न तुम सो मान हठी हठी हूँ न मांगत दान, कही हूँ न मृदु मुरली बजावन करन तुम सो गान, फिरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, कही हूँ न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हूँ न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हूँ न करन सिंगार बट तर बसन जमुना कुल, फिरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, भुज भूषण जुत कंध धरि कै रास नृत्यन कराऊं। फिर मैं अपनी भुजा को आपके कंधे पर नहीं रखूंगी कभी भी। हमारी भुजा में चूड़ियां रहती हैं, कंकड़ रहते हैं, आपके कोमल कंधे पर गड़ते होंगे, मैं कभी अपना बाह आपके कंधे पर नहीं रखूंगी। भुज भुज भूषण जुत कंध धरि कै रास नृत्य न कराम, मैं आपसे नाचने के लिए नहीं कहूँगी, आपसे रास नृत्य नहीं कराऊंगी, आपके कंधे पर भुजा नहीं रखूँगी। आप हमारे कंधे पर भुजा रखिएगा, आपके कंधे पर मैं भुजा नहीं रखूँगी। अब राधा रानी संकेत गांव जहाँ है, संकेत वन में बैठ करके श्री ललिता जी विशाखा आदि में से किसी को भेजती थी कि जाओ प्रीतम को बुला लाओ, तो रात में आने में कांटे पैर में लगने का भय ऐसा वो सब लोक लज्जा भी कई, तो कहती अब नहीं बुलाऊंगी, मैं दुख सह लूंगी, लेकिन अब उनको कह देना कि मैं इस तरह से उनको नहीं बुलाऊंगी। भुज भूषण जुत कंध धरि के रास नृत्य न कराऊं, हौ संकेत निकुंज बसि के दूति मुख न बुलाऊं, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, एक बार जुदरस दिखवहुं प्रीति पंथ बसाय, चंवर करऊं चढ़ाय आसन नयन अंग लगाय, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ। एक बार आइए आप ब्रज में, प्रीति पंथ बसाय, मैं प्रीति के पंथ पर आपको बसा करके और आपको चमर झुलाऊंगी, आसन पर बैठा करके आपको पंखा झलूंगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी सेवा नहीं की। नयन अंग लगाए, मैं अपना शरीर और नेत्र लगा करके, मतलब आपको अपने नयन में रखूंगी, आपका आपकी सुरक्षा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। देहु दर्शन नंद नंदन मिलन ही की आस, सूर प्रभु की कुंवर छवि को मरत लोचन प्यास, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहुं गोकुलनाथ।
वृंदावन इस समय बहुत दुखदाई हो गया है कृष्ण के विरह में, जो भी है उल्टा लग रहा है, कोयल की बोली काल जैसी लग रही है, चंद्रमा जहर उगल रहा है, और शीतल मंद समीर बिल्कुल विष की माने सांप के सांस की तरह लग रहा है। तो कोई कोई कहते हैं उद्धव जा करके कह दो कि वे यहाँ न आवे, इस समय यहाँ न आवे, इस समय यहाँ विकराल दशा हो गई है, जब तक ब्रज की दशा नहीं सुधर जाती है प्रियतम यहाँ न आवे, इनको बहुत दुख होगा। तो उसको कहती उधो इतनी जाय कहो, उधो इतनी जाय कहो, सब बल्लभी कहत हरिशो ये दिन मधुपुरी रहो। यहाँ पर सभी गोपियां कह रहे हैं उद्धव जी कि इस समय हरि मधुपुरी में ही रहें, यहाँ न आवे। सब बल्लभी कहत हरि सो ये दिन मधुपुरी रहो, क्यों ब्रज में आने में क्या दुख है? तो कहती हैं उद्धव जी से, तुम देखते, आप देखते हैं उद्धव जी ना, आज काल तुम हूँ देखत हो तपत तरणि समचंद, आप भी देख रहे हैं कि चंद्रमा तरणी मतलब सूर्य की तरह तप्त हो रहा है, विरह में चंद्रमा की किरणें बहुत दाहक होती हैं विरहिणी को, आप तो देख ही रहे हैं उद्धव जी। आज काल तुम हूँ देखत हो, आज काल तुम हूँ देखत हो तपत तरणी समचंद, सुंदर श्याम परम कोमल तन क्यों सही है नंद नंद। वे रात के समय हम लोगों के साथ बिहार करते थे, रास बिहार, उनका बहुत सुकोमल शरीर है, श्याम सुंदर है, वे कैसे इस ताप को सह पाएंगे, इसलिए कह दो अभी वो उधर रहे, अभी वो मथुरा में ही रहे। सुंदर श्याम परम कोमल तन क्यों सही है नंद नंद, नंद महाराज के लाडले परम सुकोमल शरीर वाले हैं, कैसे इस ताप को सह पाएंगे, दिन भर तो घाम लगता ही है, रात के समय चंद्रमा भी दूसरे सूरज का काम कर रहा है, इसलिए कह देना यहाँ न आवे। मधुर मोर पिक परुष बचन यति बन उप बन चढ़ी बोलत, जब वे ब्रज में थे हम लोगों के साथ तो उस समय यहाँ के मोर और कोयल भौरे आदि बहुत सुंदर बोलते थे, उनकी बोली बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन आज ये लोग बहुत कठोर बोल रहे हैं, इनकी बोली बहुत दुखद लग रही है। मधुर मोर पिक परुष बचन अति बन उप बन चढ़ी बोलत, और जो गौएं हैं ब्रज की और बैल हैं, जो पशु हैं जिनको उन्होंने चराया, उस समय तो गाय बैल जैसे लग रहे थे, लेकिन अब सिंह और बाघ की तरह ही लग रहे हैं गली में घूमते हुए। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, और वो भी घूम रहे हैं गांव में, वन में चरने नहीं जा रहे हैं, सिंह की तरह बाघ की तरह भयानक लग रहे हैं, मतलब इनको देख करके इतना दुख होता है कि एक दिन इनको कृष्ण चराते थे सुखी थे और आज ऐसे, तो हमको तो ये बड़े भयावह लग रहे, इसलिए उनको कह दो माता में। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, आसन असन बसन विषय ही सम भूषण भवन पहार, आसन असन कहीं सज्जा जो है इस समय, पलंग आदि और भोजन और कपड़ा, ये सब बीस जैसे लग रहे, तो तो प्रियतम यहाँ आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? सब तो जहर जैसा लग रहा है, विष जैसा भयानक लग रहा है, क्या खाएंगे? तो आसन बसन आसन असन बसन विष अहि समभूषण भवन पार। और भूषण हे उद्धव, ये गहने सांप जैसे लग रहे हैं, और भवन जो है वो भीषण पहाड़ जैसा लग रहा है, पहाड़ की गुफा जैसा जिसमें भयानक जीव रहते हैं। तो जित तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष लिए सतमार। और जहाँ तहाँ प्रत्येक वृक्ष पर जो फूल और फलों से लदा हुआ है, ऐसा लगता है कि सैकड़ों कामदेव धनुष चढ़ा करके घूम रहा है इस ब्रज में। इसीलिए प्रियतम को बचाओ, आने मत दो यहाँ। मतलब भीतरी भाव है कि जरूर बुला लाओ, तुरंत लाओ, तुरंत लाओ, उनके बिना ही ये सब दशा है, उनके आते ही सब ठीक हो जाएगी। लेकिन उल्टी भाषा है, ये भाव में वो वही बोल रही हैं कि यहाँ कामदेव धनुष बाण लेकर के हजार सैकड़ों कामदेव एक एक वृक्ष पर धनुष बाण लेकर के खड़ा है और मारने के लिए तैयार, इसलिए उनको यहाँ मत आने दो। तुम तो परम साधु को मल मन जानत हो सबरीर। हे उद्धव जी, आप तो परम साधु हैं, आप सुकुमार मन वाले हैं, कोमल मन वाले हैं, सब रीति जानते हैं, इसलिए सूर श्याम को क्यों बोलें ब्रज बिन टारे यह ईत ईत भीत जन प्रजा दुखार। यह दुर्दशा, यह बुरा समय बिना बिताए कृष्ण को क्यों यहाँ बुलाया जाए? कोई जरूरत नहीं, ये सब समय बीत जाएगा, अच्छा दिन आएगा, तब उनको कह दीजिएगा मथुरा से आने के लिए। सूर श्याम को क्यों बोलें ब्रज बिन टारे यह ईत उधो इतनी जाय कहो, ये कह दो माता। तो इस तरह से अद्भुत अलौकिक और असंगत बातें गोपी जन उद्धव जी के सामने बोल रहे हैं।
रबीनो कैसे गाय दुई है हमारी वाह, पद बीनो कैसे नाची थी रकीरी जाई है, कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी माखन बजाई बैन गोधन गवाई है, देखी सुनी कैसे दृग समन भी नहीं हाय, भोरे ब्रज बसी न की विपति भराई, राव रोयानुप को अलख रूप ब्रह्म उदो कहो कौन दो हमारे काम आई है, कहो कौन दो हमारे काम आई है। करबीन कैसे गाय दुई है हमारी वाह, पद बीनो कैसे नाची थी रकीरी जाई है, कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है, देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं आय, भोरे ब्रज वसिन की विपत्ति बराई है, राव रोय अनुप को अलख रूप ब्रह्म उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है, उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है।
ये है भगवान के अंगों के साथ ममता, गाढ़ आसक्ति। कोई प्रश्न ही नहीं है कृष्ण के अलावा ये निराकार और ज्योति, और ये ध्यान करो। गाय दुहना है, नाचना है, माखन खाना है, गोवर्धन उठाना है, हाथ है ही नहीं तो कैसे उठाएगा? कभी फिर इंद्र वर्षा करने लगेंगे तो क्या होगा? तो वो ब्रह्म किस काम में आएगा? जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हमें लाभ होगा, हमें शांति होगी, तो उद्धव जी हम अपनी बात बताती हैं।
कि कृष्ण के विरह में इतना सुख हो रहा है कि उस सुख के आगे आप जो बात बता रहे हैं वो हमारे लिए भयानक दुख है, बल्कि विरह में हम रहे हैं, ऐसे ही बसेंगे ब्रज में, ठीक है, लेकिन आप ये सब मुक्ति आदि की बात मत कहिए। सरगन चाहे अपवरगन चाहे सुनो, भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उरयाने हैं। स्वर्ग नहीं चाहते हैं, अपवर्ग नहीं चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति दोनों से हमारी विरक्ति है। कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तुम्हारा जोग हमारे लिए रोग लग रहा है भयानक, तुम्हारे जोग रोग में तन मन शासन की सांसत ही प्रमाण है। हम तो तुम्हारे जोग में ऐसा देख रहे हैं कि शरीर को भी सांसत है और मन को भी सांसत, दुख ही दुख देख रही है। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कानी ही में, लोक पर लोक को आनंद जिए जाने। ब्रजचंद्र के कृपा में, स्नेह में, मुस्कानी में ही हम लोग लोक परलोक का आनंद जानती हैं। उनका हंसता हुआ एक बार मुख देखने को मिले, बस हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद यही है। अरे जाके या बिजोग दुख हूं में सुख ऐसो कछु, जिनके वियोग में भी कुछ ऐसा सुख है कि जाही पाई ब्रह्म सुख हूं में दुख माने।